أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آيات نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، تم یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، لَن نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں، ایک قسم کے کھانا، من و سلوا جو ہے ایک قسم کا کھانا ہے، اس پر ہم صبر نہیں کرتے ہیں. پھر فدع لنا ربک، دعا کرو اپنے پروردگار سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلها سبزی جات، وقثائها کھیرے، وفومها لسن، بعض روایات نے کہا فومی کا معنی گندم ہے لیکن بیشتر جو بتایا ہے وہ لسن کو بتاتا ہے، وعدسها، اور جو عدس ایک قسم کے کیا ہے، دال کے ایک قسم ہے وہ، وبصلها، اور پیاز، ان چیزوں کو لاؤ. اب اس میں جواب میں خدا نے کیا کہا، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کیا تم تبدیل کرتے ہو ادنا کو خیر کی جگہ پر، جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر کمتر کو اپناتے ہو، بہتر کی جگہ پر کمتر کو تم لاتے ہو، یہ کیسی بات. اہبطوا مصرا، اگر تم ایسا چاہتے ہو مصر میں جاؤ، مصر عربی زبان میں شہر کو بھی کہتے ہیں، یہ صحرا سینا میں تھے یہ لوگ، تو من سلوا نازل ہوتا تھا. اگر اس قسم کی چیزیں چاہتے ہو تو کسی شہر میں جاؤ، شہر کو فتح کرو، شہر میں جاؤ کام کرو کھاؤ. مصر کا ایک معنی شہر ہے عربی زبان میں، ایک ہو سکتا ہے وہی مصر جہاں فرعون کی حکومت تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ تم اسی مصر میں جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے جو کچھ تم نے مانگا ہے وہاں پر مل جائے گا. تو یہاں ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. تو ایک نقطہ یہ ہے، ایک عیب، کہ ایک قسم کے تحدید کی شکل میں، اعتراض کی شکل میں، बगावत की शक्ल में कह रहे हैं। एक होता है पहले इन्होंने क्या मांगा, खाना मांगा, मन मसलवा नाजिल हुआ, पानी मांगा तो 12 कबीले के लिए 12 चश्मे पत्थर से फूटे। लेकिन अब जो अंदाज अपना रहे कि हम सब्र नहीं करते हैं एक किस्म के खाने पर, गोया बड़े मगरूर हो रहे हैं, बड़े क्या है बगावत के अंदाज अपना रहे हैं। जो एहतराम रखना चाहिए वो अंदाज इनके पास नहीं है, बगावत का अंदाज है। एक मुश्किल ये है। दूसरी बात यह है कि सब्र नहीं करते हैं एक किस्म के खाने पर, ये खाने में पहुंच कर पेट की बारी आई तो तुम्हारे सब्र ख़त्म हो गई। आजकल के मुआशरों में भी कुछ पेट के मसला हो तो एहतजाज होता है वगैरह होता है। इंसानियत, अकदार, शराफत, खुलासा इस किस्म की चीज़ों को ख़तरा हो तो कोई फिक्र नहीं होती है। पेट के मसले के लिए कुछ हो जाए तो मुल्क भर में एहतजाज होता है, क्योंकि इंसान बेहतर समझता है कि मैं एक हैवान हूँ, हैवानी ज़रूरतों को पहचान सकता है, क्योंकि इंसान अपने आप को एक हैवान समझता है और इंसानी ज़रूरतों को वो ज़रूरत ही नहीं समझता है। मानवियत है, रूहानियत है, अख़लाक है, फजीलतें हैं, कमालात है, इबादत है, खुलासा इंसानी जो रूह इंसान की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को ज़रूरत ही नहीं समझता है, जिस्म की ज़रूरतों को ज़रूरत समझता है। तो रूहानी कुछ भी न मिले कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिस्मानी लिहाज से मिल रहा है इनको मन सलवा। अभी तो लोगों की तमन्ना और आरजू यही है ना मन सलवा नाजिल हो जाए, बैठकर खाए, काम किए बगैर ऐश करे। लेकिन वो लोग इस पर भी कानी नहीं थे, मन सलवा पर कानी नहीं थे। कानी न होने के अंदाज भी बागियाना अंदाज से बात कर रहे हैं, बगावत का अंदाज है ये। एक दूसरा ये है कि ये जो एक सवाल यहाँ पर मुमकिन है किसी के जहन में आ जाए कि जो मुख्तलिफ चीज़ें तलब करना एक किस्म के खाने से उगता जाता है, एक किस्म का खाना हमेशा मिलने से उगता जाता है, अगरचि क्या है गोश्त मज़ेदार गोश्त क्यों ना हो, असल क्यों ना हो, शहद क्यों ना हो, तो ये उनकी इतनी गलत मुतालबा नहीं है। मसला ये है कि उनके अर्ज़ के दो मुश्किल, एक ये है कि अंदाज बागियाना अंदाज है, बंदगाना अंदाज नहीं है, बंद के अंदाज गुफ्तगू ये नहीं है, बागी का अंदाज गुफ्तगू है। दूसरे ये है कि पेट के मसले में आप इतने हसास होते हैं, दूसरी जगहों पर तो क्या है गौशाला परस्ती के लिए तैयार थे, बुत परस्ती के लिए तैयार थे, तो उसके बाद ये जो इंसान की तबीयत में है मुख्तलिफ चीज़ें चाहना, एक किस्म की चीज़ पर उगता जाना, ये तबीयत है। इससे मुमकिन है इंसान बोरियत से निकल आए, इंसानी मुआशरे में क्या है माशी तरक्की हो, लेकिन माशी तरक्की इंसानियत की तरक्की नहीं है, ये तो वाज़ह है। माशी तरक्की हो सकता है, इंसान की खुशी के बायस बनता है, लेकिन इंसानियत में उसका दर्जा आगे नहीं बढ़ा है। मुमकिन है आपसे हज़ार मरतबे बेहतर मईशत के लिहाज से अय्याशी करने वाले इंसानियत के लिहाज से बहुत नीचे हो, अकदार के लिहाज से, फजाइल के लिहाज से बहुत पस्त हो। इसीलिए असल ये जो तनव्वु तलबी है, मुख्तलिफ चीज़ें चाहना, ये सिफत यानी ठीक है, लेकिन इसको नंबर एक अहमियत नहीं देना चाहिए। मानवियत के बाद अक्लानियत के अंदर, इल्म मारिफत के अंदर इसकी तरफ तवज्जो दे, इसको एक नंबर पर नहीं रखना चाहिए, पहला हदफ करार नहीं देना चाहिए। देखिए इंसानी माशरे में औरतों को आए दिन नए नए फैशन क्या है, कपड़े सिलाने का अंदाज, कपड़ों का अंदाज पेश करते हैं और क्या है घर वालों के आधा खर्चा उसी में जाता है, कपड़ा है, दूसरी चीज़ें हैं, जूता है और क्या नाम है मुख्तलिफ़ किस्म के जीनत के सामान है, मर्दों के लिए भी गाड़ियाँ भी आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ। तनव्वु जो होता है बायस बनता है क्या, इंसान शब रोज़ उसी में मसरूफ़ होता है, इतने मसरूफ़ होना पड़ता है कि इंसानी अकदार की तरफ तवज्जो दे ही नहीं सकते। यही मादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, हर महीने में एक नए फैशन, नई चीज़, बेटी मुतालबा करती है, बेटा मुतालबा करता है, जोजा मुतालबा करता है, खुद मर्द भी चाहता है क्या है अगर इन सब के बाद कुछ पैसा बचे तो खुद भी इस्तेफादा करें, तो कभी क्या है आला अहदाफ के लिए टाइम ही नहीं बचता है, तो हमेशा पस्त अहदाफ के पीछे जाना पड़ता है। वाकई पूरी दुनिया में आप देख, दुनिया के तरीके याफ्ता ममालिक में भी इन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद घर में कुछ बचता ही नहीं है कि वो उनके तरफ तवज्जो दे दे। कोई इंसान अपने आप से सवाल करे, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा खालिक कौन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे आला अहदाफ क्या होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। अभी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों के ख्याल में क्या है, हम बंदर के नूर चश्मे और बंदर की तरह ज़िंदगी करेंगे और मर जाएंगे, ख़त्म। अब इस पर सोचें, सोचने का मौका ही नहीं है। आ सुबह सवेरे चले जाते दफ्तर में, कंपनी में, जहाँ भी जाना हो, और मुसलसल काम करते हैं। किसी का कुछ लोग कहते थे कि इतना काम करते हैं कि 8 घंटे काम करने के बाद बिल्कुल निडाल हो जाते हैं, मुर्दार हो जाते हैं। फिर इत्तेफाकन किसी के पास कोई जान रही, फिर वो उसको दोबारा काम पर लगाते हैं, क्लबों में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। हत्ता बाद बुजुर्गान कहते थे कि एक अमेरिका में एक जो है गिरजाघर में जो पादरी था, कमरे रखा था, उसमें लड़की लड़के अगर आपस में नाजायज़ राबिता करना चाहे कर सकें, ताकि उस बहाने से कुछ लोगों को गिरजाघर में लाए। अब कोई मानवियत इंसानियत के लिए सोचने के टाइम ही नहीं बचता है, मौका ही नहीं देता है। सिस्टम कुछ इस तरह के है, सिस्टम इस तरह के है, लेकिन यही फैशनेबल आप देखिए, ये फैशनेबल के हवाले से क्या है, टाइम ही नहीं बचता है, इसी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को पूरा करने में ज़िंदगियां गुजर जाएंगी। बस खुदा ने इंसान को दिया है तनव्वु तलबी, लेकिन इसको पहला मसला नहीं समझना चाहिए, पहला हदफ नहीं समझना चाहिए, मकसद खिलकत, मकसद ज़िंदगी नहीं समझना चाहिए। तुम्हारा मकसद ज़िंदगी खुदा है, तुम्हारा महबूब असली खुदा है। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व अशीरतुकुम व अज़वाजुकुम व अमवालुकुम व अमवाल इख्तलफ्तुमूहा, आबा अजदाद औलाद भाई जोजा माल दौलत सब खुदा व रसूल से ज़्यादा महबूब हो, खुदा व रसूल और व जहाद फी सबीली, जहाद दर रहा है खुदा व रसूल से ज़्यादा महबूब हो, तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। क्यों, ये आदमी बुलंद अहदाफ वाला हो ही नहीं सकता, एक जानवर होगा। तरक्की याफ्ता जानवर, बेचारा गाय नहीं सोच सकती है, शेर भी नहीं सोच सकता है, लेकिन इंसान जो है अक्ल व हुनर के साथ है, जब उसका महबूब असली खुदा रसूल और दीन न हो तो सबसे खतरनाक हैवान बनता है, जानवर बन जाता है। तो यही फरमाते क्या, लन नस्बर आला, हम सब्र नहीं करते हैं एक किस्म के खाने पर, एक किस्म के खुदा के दरगाह में बेअदबी कर रहे हैं। और दूसरे यही क्या अर्ज किया, यही कि इसको मांगना ठीक है लेकिन उसको सब कुछ नहीं समझना चाहिए। فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا, ज़मीन से जो कुछ उगती है, मिन बक़लिहा, मसलन सब्जीजात जो ज़मीन से उगती है हमें वो चाहिए, وَقِثَّائِهَا, खीरा, और وَفُومِهَا, और लहसुन, وَعَدَسِهَا, और अदस दाल के अकसाम में से है, वह बसलिहा, और प्याज। काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, हज़रत मूसा ने फरमाया, ज़ाहिर हुक्म खुदा से फरमाया, आया तुम तब्दील करते हो उस चीज़ को जो अदना है, उस चीज़ के बदले में चाहते हो, उस चीज़ से तब्दील करते हो जो खैर है तुम्हारे लिए, जो बेहतर है, उसको छोड़कर अदना को लाते हो। अब असल और परंदे के गोश्त बेहतर है इन चीज़ों से, एक एक लज्जत के लिहाज से, लज्जत के लिहाज से इन चीज़ों से वो बेहतर। आप होटल में जाइए, गोश्त के खाना और सब्जीजात के खाना। और दूसरा यह है कि आसान तरीके से तुम्हारे हाथ में आता है, बेहतर होने की एक दूसरा वजह क्या है, ये ऊपर से आता है, तुम्हारे हाथ में आता है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मन व सलवा के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से उन चीज़ों के लज्जत भी बेशतर, फ़ायदा भी बेशतर, मन व सलवा का फ़ायदा भी बेशतर, लज्जत भी बेशतर, टाइम भी तुम्हारे पास बचता था, तुम अपने मकसद तख्लीक के लिए, हदफ़ ज़िंदगी के लिए अपनी उम्र से इस्तेफादा कर सकते हैं। खेती बाड़ी करते हुए टाइम गुजारना क्या है, उसमें तो आपके इंसानियत में इजाफा नहीं होता है। मौला अमीर अल मोमिनीन पैगंबर के बाद अपने खिलाफत तक 25 साल रहे, खेती बाड़ी करते रहे, जबकि अली के इल्म से दुनिया बढ़ सकती थी, उम्मत इस्तेफादा कर सकती थी, लेकिन दरवाजे सब बंद है। वही 5 साल, 4.5 साल जो अली इख्तदार पर रहे, उसमें भी 2.5 साल जंगों के हालत में रहे, जंग या जंग की तैयारियों में, उसी मुद्दत में नहजुल बलागा और बाकी कलाम अली तकरीबन 90% से ज़्यादा उसी मुद्दत की है। यानी मौला क्या है, कुआँ खोदते थे, दरख्त खुरमा काश करते थे। एक दफ़ा आप एक बूरी उठा के ले जा रहे थे, किसी ने पूछा ये अली क्या उठा के जा रहे हैं, फरमाए इंशाल्लाह 1,00,000 खुरमा काश करना था, और खुरमा की शक्ल में, और फिर वक्फ करते थे। लेकिन खुलासे ये काम एक दूसरा आदमी भी कर सकता है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। अली के पास जो कुछ था वो क्या था, इल्म व मारिफत, तौहीद व खुदा, ईमान था, इससे उम्मत को, इंसानियत को मालामाल कर सकता था। तो खुलासा तुम्हारे पास टाइम था तरक्की करने के लिए, मारिफत के लिए, जब मन सलवा उतरता है तुम अब खुदा के नबी से सही फ़ायदा उठा सकते हो। तो ऐसा खाना जो तैयार था उसको छोड़कर तुम खेती बाड़ी करने के शौक हो, इसलिए फरमाया क्या है, खैर को छोड़कर तुम पस की तरफ जा रहे हो। एहबितु मिस्रन, एहबितु हबता नीचे उतरने को कहते हैं। हजरत आदम, हव्वा, शैतान तीनों को खुदा की तरफ हुक्म आया नीचे उतरो, यानी नीचे जाने को एहबितु कहते हैं, ऊपर जाने को ताला, ताली, बुलंदी की तरफ आना, मिस्र की तरफ जाओ, उतर जाओ मिस्र की तरफ, यानी किसी शहर में जाओ, मसरूफ हो जाओगे काम में, इन्हीं कामों में मसरूफ हो जाओगे, तरक्की की तरफ तुम नहीं जाओगे और शब रोज पेट की फिक्र में रहोगे, किसी शहर में जाओ अगर ये चाहते हो। فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, तुम्हारे लिए मिस्र में हर वो चीज़ है जो तुम चाहते हो। अब अर्ज़ के मिस्र मुफस्सरीन में इख्तलाफ है, आया कोई भी शहर है, हर शहर को भी अरबी ज़बान में मिस्र कहते हैं, मिस्र की हुकूमत को भी मिस्र कहते हैं, दोनों का इम्कान है, दोनों का इम्कान है। उसके बाद फरमाते हैं, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكِنَةُ, ضُرِبَتْ ضَرْب, ये जो पैसा छापते थे कदीम ज़माने में, सिक्का छापते थे उसको ज़र्ब कहते थे, ज़िल्लत के छाप लग गया उन पर, जलील हो गए यहूदियों पर, ज़िल्लत के छाप लग गई, वल मस्कना और मस्कनत की ज़िल्लत, पस्ती, हकारत, मस्कनत मिस्कीन से है, ज़मींगीर, दोबारा वही पस्ती है लेकिन ज़मींगीर हो गए, ऐसी पस्ती जो ज़मीन से उठ ही नहीं सकते हैं, यानी ज़िल्लत इनके मुकद्दर बन गई यहूदियों की, जब खुदा के रसूल के साथ इस तरह से पेश आते थे तो ज़िल्लत और मस्कनत उनके मुकद्दर हो गई। किस तरह से खुदा के रसूल के साथ पेश आए, हज़रत मूसा ने कितनी खदमात अंजाम दी, वो भी मौजज़ाना शक्ल में, उसके बावजूद यहूदियों का अंदाज कैसा था, अभी आप देख रहे हैं, अभी तक हम इन्हीं से दो चार हैं, कितने जुल्म कर रहे हैं। उस दिन यहूदी बच्चे से वो हम टीवी में पूछ रहा था, छोटे बच्चे से, फिर बेतुल मक़दस में फिलिस्तीनी होंगे तुम्हारे नज़र में आइंदा का, होंगे लेकिन वो हमारे खदमतकार होंगे, हमारे नौकर होंगे, इस तरीके से पेश आते हैं आलम वालों के साथ, और सब की निस्बत में बदख्वाह थे, इसीलिए कोई भी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सब की निस्बत में बदतरीन जज्बात के हामिल थे, इसीलिए क्या नाम है, हिटलर ने उनका कत्ल आम किया, उसको तो कई दफ़ा बढ़ाया है, बड़ा चढ़ा कर पेश किया है, क्या है 10 बराबर 20 बराबर करके, कोई तहकीक करे, रोजे गारुद्दीन ने आप जगह तहकीक करके साबित किया, इतना बड़ा कत्ल आम नहीं था, तो उसको जेल में डाल दिया, जुर्माना कर दिया उस पर, खुदा के बारे में तहकीक करके खुदा को के इनकार की इजाज़त है, पैगंबर के बारे में तहकीक करके इनकार करने की इजाज़त है, लेकिन होलोकास्ट के बारे में तहकीक करने की इजाज़त है ही नहीं है, इनकार करेंगे तो मज़ीद, ये दुनिया की हालत है, ये कौम यहूद है, उस वक्त हज़रत मूसा जो नजात देने वाले थे उनके साथ इस तरह से पेश आए, इसीलिए फरमाया ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल्मस्कना, ज़िल्लत इनके मुकद्दर बन गई है, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, खुदा के गज़ब के साथ ये पलट गए, खुदा के गज़ब इनके शामिल हाल हुआ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इनके मुकद्दर ज़िल्लत और मस्कनत दुनिया में, आखिरत में गज़ब खुदा, गज़ब खुदा के आसार, गज़ब खुदा के नताइज भुगतेंगे आखिरत में। ज़ालिक, ये क्यों मस्कनत, देखो ज़िल्लत इंसान के लिए सबसे बड़ी अज़ाब है, इज़्ज़त और ज़िल्लत एक अहम चीज़ है, کربلا میں مولا امام کے قیام کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟ عزت ہے ہاتھ من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، اب اللہ خدا نہیں مانتا ہے، وہ رسول ہو رسول خدا نہیں مانتا ہے، والمؤمنون مؤمنین نہیں مانتے ہیں، وحجور طابت و طہرت، ان دام وہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے، پاک و پاکیزہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی وہ نہیں مانتے کہ ہم پست لوگوں کی اطاعت کو ترجیح دے، انؤثر طاعت لعام علی مصارع الکرام، لئیم اور پست لوگوں کی اطاعت کو ترجیح دے کس پر؟ شہادت پر، ہم شہادت کو اپنائیں گے، پست لوگوں کی اطاعت نہیں کریں گے۔ افسوس کی بات ہے آج کل کچھ مولانے کہنے لگے امام سجاد نے یزید کی بیعت کی ہے، ابھی مولا امام حسین نے یزید کے بیعت کو ٹھکرایا، فرمائے مجھ جیسے اس جیسے کے بیعت نہیں کر سکتے، جبکہ ابھی یزید اقتدار پر آیا تھا، ابھی کچھ کیا نہیں تھا بظاہر، لیکن ابھی امام سجاد کے زمانے میں کربلا کا واقعہ، اسیری کا واقعہ، مدینہ کا واقعہ، مکہ کا واقعہ سب ہونے کے بعد کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ مشکلات بشر ہے، مفادات کے لیے دن کو رات، رات کو دن کہہ سکتے ہیں، البتہ سننے والے باشعور ہونے کی ضرورت، یہ جو کیا نام ہے گندم نما جو بیچنے والے ہیں، نقلی مال بیچنے والے ہیں، ان کی سے ہوشیار نہ رہے تو اصلی خدا کی جگہ پر نقلی خدا پیش کرتے ہیں، اصلی پیغمبر کی جگہ پر جعلی پیغمبر پیش کرتے ہیں، اصلی امام کی جگہ پر جعلی امام پیش کرتے ہیں، اصلی نائب امام کی جگہ پر جعلی نائب امام پیش کرتے ہیں، جتنا جس طرح سے اصلی سونے کی جگہ پر نقلی سونا پیش کرتے ہیں، اصلی ڈاکٹر کی جگہ پر نقلی ڈاکٹر پیش کرتے ہیں، لوگوں کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے، بصیرت کی اہمیت اسی وجہ سے ہے۔ ذالک بانہم کان، وجہ کیا ہے، یہ لوگ کیوں ذلت مسکنت ان کے مقدر بن گئی اور غضب الہی کے ساتھ پلٹ گئے، پلٹ جائیں گے خدا کے پاس، کیوں؟ کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلسل مسلسل کفر اختیار کرتے تھے، یہ کانوا یکفرون اس قسم کے عبادت کا معنی یہ ہے کہ کوئی کام مسلسل کرے، عادت بن جائے، یہ یہودی مسلسل کفر اختیار کرتے تھے، یکفرون بی آیات اللہ، آیات خدا کو ٹھکراتے تھے، انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو بعض اوقات بلا واسطہ اپنے ہاتھوں پہ قتل کرتے تھے، بعض اوقات وسیلہ بنتے تھے، ان کی وجہ سے انبیاء مارے جاتے تھے، ان کی وجہ سے انبیاء شہید ہو جاتے تھے۔ قتل کرنے کے دو طریقے ہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ، ذلک بما عصوا، یہ کیوں اتنے پست ہو گئے، ان کا کام ہی آیات خدا کو ٹھکرانا، انبیاء کا قتل کرنا، اتنے بڑے جرائم کیوں کرتے یہ لوگ، کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں، فطرت انسانی سے دور ہے، کیا ہوا ہے ان کو؟ فرماتے ذالک وعصو، اس کی وجہ ہی گناہان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلا گناہ کرتے تھے، دل سیاہ ہوتے ہوتے آخر میں ان کے پیشہ ہو گیا انبیاء کو قتل کرنا، عادت بن گئی، وکانوا یعتدون، وجہ یہ کہ یہ لوگ گناہ کرتے تھے اور تعدی کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، حدود الہی کے خیال نہیں رکھتے تھے، لوگوں پر تعدی کرتے تھے، तो आहिस्ता आहिस्ता गुनाह क्या है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, कदम ब कदम बढ़ता चला जाता है। जनाब शहजादी दरबार शाम में ये फरमाती है जब यजीद ने कुफर के अल्फाज जबान पर जारी किया, क्या कहा, लाइबद हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वही नजर, बनी हाशिम ने हुकूमत के साथ खेल खेला है, वरना न कोई वही उतरी है न कोई खबर आई है, इनकार रिसालत की उसने। तो शहजादी ने फरमाया क्या, तुम मकान आकिबत अल्लज़ीना असाउस्सू, कुरान की आयत की तिलावत की, उन लोगों के आकिबत जो बड़े बड़े गुनाहान करते हैं उनके आकिबत क्या है, अनकद्दबू बिआयतिल्लाह, आयत खुदा को झुठलाते हैं, काफिर हो जाते हैं। तुम्हारा काफिर होना तुम्हारे गुनाहों के नतीजे में है। यहाँ पर भी यही फरमाता है कि बेमा असो वकानु यातदून, इस्यान करते थे, गुनाह करते थे और तअद्दी करते थे, इस वजह से आयात खुदा के इनकार करते थे और अंबिया को कत्ल करते थे, और उसके वजह से क्या है, ये गज़ब इलाही के हकदार बन गए और ज़िल्लत और मस्कनत इनके मुकद्दर बन गए। पूरी तारीख में यहूदी जलील थे तमाम अक्वाम आलम के पास। अभी हिटलर के वाकया के बाद आप जानते हैं इन्होंने कुछ रास्ता सोचा, क्या सोचा, एक दुनिया के मईशत पर हम कंट्रोल करेंगे। अभी भी खुद यहूदी ने यहूदियों पर हुकूमत कर रहा है, कौन, सहयूनिज्म, यहूदियों का खास तबका, उनके इज्तम हुआ, उस इज्तम में फैसले हुए क्या करना क्या नहीं करना, किस तरह से दुनिया अपने इख्तियार में लेना है। तो खुलास जिल्लत में थे, अब इन अवाखिर में दुनिया के मईशत पर कब्जा करने के लिए सोचा है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के सुपर ताकतों के आलाए कार है। अभी भी अमेरिका इनसे फ़ायदा उठाता है अपने मकासद के लिए, ये तो हम शब रोज़ डरते रहते हैं, जंग की हालत में है, डरते रहते हैं, अगर जो जुल्म बहुत करते हैं। आपने देखा गज़ा में छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या किया, नौजायदा बच्चों के साथ क्या किया, अस्पतालों में कहते थे कि हमास के जंगजू यहाँ पर अस्पतालों के अंदर है, हम हमले के कई, हर अस्पताल पर कई मरतबा हमले किया, जो असल चाहते थे कोई अस्पताल ही न रहे ताकि कोई इलाज के मरकज न रहे उसके लिए। अभी वहाँ पर बेरूत में अस्पताल पर हमला कर रहा है, क्या कहता है, यहाँ पर हिजबुल्ला के मिसाइल अंदर है। तो लुबनान में जाहिर है बाहर के खबर निगार आते हैं कि खुला हुआ मुल्क है, तो दिखाया कौन से मिसाइल है इस अस्पताल के अंदर लुबनान में, इसीलिए क्योंकि खतरा है दुनिया के सामने खुला हुआ है, वो जैसे ही खबर निकल आता है उसको उड़ा देते हैं। आज भी अलमिनार और अलमयादीन के कई खबर निगार को कत्ल किया और बहुत सुन को ज़ख्मी किया, और ये पाकिस्तान का जो हामिद मीर गया था वो कह रहा था कि ये गज़ा वालों से ज़्यादा मज़लूम है, क्योंकि यहाँ की खबरें बाहर नहीं जा सकती है। खबर निगार आकर, कोई खबर निगार इदारा जब आता है तो उसको उड़ा देता है, जब उड़ा देता है यहाँ पर कोई खबर दे ही नहीं सकता है। कहते मैं जब कैमरा के साथ बाहर निकलता था तो एक ड्रोन मेरे सर पर आता था तो लोग डर जाते थे कि भाई इसकी वजह से हम खतरे में पड़ रहे हैं। तो ये यहूदियों की हालत है, और तुमको किस तरह से कत्ल आम किया, बूढ़ों को किस तरह से कत्ल आम किया, स्कूलों पर हमले किया, मसाजिद पर हमले किया, गिरजाघरों पर हमले किया, खुद अक़्वाम मुत्तहिदे के मराकिस सब पर बिला इस्तिस्ना हमले किया, कोई ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी जिस पर हमले ना किया हो। ये यहूदी है, इतनी पस्त कौम के क़ुरान किस हद तक इनके हालात को बयान करे कि हज़रत मूसा को कितने तंग करते थे ये लोग, कितने तंग करते थे, और अब तक जब अपने कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मूसा को इतना तंग करते थे, हज़रत मूसा नजात देने वाले थे, उन वो हज़रत मूसा के इंतज़ार में थे कि फिरौन के हाथ से हज़रत मूसा उनको नजात देगा। हज़रत मूसा ने भी नजात दिया, नजात देकर लाया, फिर मुसलसल तंग करते थे। इसी सहराए तीह में, तीह गुम होने को, सरगर्दान होने को कहते हैं, इसी में हज़रत मूसा और हज़रत हारून किसी जगह पर गए थे। उस सफ़र के दौरान हज़रत हारून दुनिया से चले गए, तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हज़रत मूसा पर, तुमने हज़रत हारून को कत्ल किया। ये ऐसी कौम है, जितनी बदतर सिफत के हामिल कोई कौम हो सकती है उसके ये हामिल है। अभी हम इनसे दो चार हैं, हमें भी हिकमत अमली अपनाना होगा। इनके पास कौमियत है, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है, कौमियत है। और ईमान न होने की वजह से दुनिया के सुपर ताकतों के गुलाम बन जाते हैं, और इसी ईमान न होने की वजह से हर नाजायज़ काम कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास ईमान है, इसीलिए इरादा ज़्यादा मजबूत है। आप फिलिस्तीनियों को देखिए, बच्चे तक अभी उन्होंने तस्लीम का ऐलान नहीं किया है, एक बच्चे से भी शिकायत आप नहीं सुनते, बहुत हैरान। ये ईमान के नतीजे में है। अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो शहादत को नुकसान नहीं समझते हैं। ईरान इराक जंग के दौरान हमेशा यही होता, ताज़ियत और ताज़ियत और तहनियत, हम मुबारकबादी देते हैं, हम ताज़ियत अज़ीज़ हमसे जुदा हो गए, इसलिए ताज़ियत, और लेकिन अपने मकसद खिलकत तक पहुँच गया, अपने खुदा के पास गया, अहले बैत के पास गया, इसीलिए तहनियत मुबारकबादी। तो फरमाते हैं क्या यहूदियों की यह हालत है, बस इन्होंने जब अम्बिया इलाही को इतना तंग किया है तो ताज्जुब ना करें। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब मदीने से आ रहे थे, गालिबन अब्दुल्लाह उमर था, कहा कि आप ना जाइए, आपको शहीद करेंगे। फरमाया बने इसराइल के ज़माने में सुबह तुलो फजर से लेकर तुलो आफ्ताब तक 70 नबी को कत्ल करते थे और फिर सुकून से आकर अपना काम करते थे, अपना कारोबार शुरू करते थे, गोया कुछ भी नहीं किया हो। इस हद तक गिरे हुए लोग थे। इसीलिए तुम मुझे शहादत से मत डराओ, खुदा से, ये खुदा के राह में उन अंबिया ने भी कुर्बानी दी है। इन्नल्लज़ीन, बाद की आयत में इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीन आमनु, ईमान लाने वाले जो मुसलमान हो गए। एक अभी इस आयत में एक किस्म के उम्मीद देता है। अब यहूदियों के खिलाफ बोलता आया ना अब तक मुसलसल, यहूदियों के खामियां, यहूदियों की शरारतें, यहूदियों के गुनाहान, यहूदियों की बुराइयां बयान करता आया, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद भी देना है। अगर इनमें कोई नेक हो, कोई अच्छा हो, उसको मायूस नहीं करना है। और एक नुक्ता ये, दूसरा नुक्ता ये है कि ये कहना है कि मेरे मेयार, ये जो दीन अदियान और मजाहिब है, ये पार्टियों की तरह नहीं है। मेयार नाम नहीं है, अकीदा व अमल है। मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, साबी हो, वो नाम मुहिम नहीं है। मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, मैं मुसलमान हूँ, मैं यहूदी हूँ, ये बिल्कुल अहम नहीं है। अहम ये है कि इन अदियान में अगर है तो आपका ईमान सही हो, आपका अकीदा सही हो और आपका अमल सही हो, ये मेयार है, अमल और अकीदा, नाम अहम नहीं है। इसीलिए सारे इंसान राह रास्त पर आ सकते हैं। इन्नल्लज़ीन आमनू, ईमान लाने वाले यानी मुसलमान, वल्लज़ीन हादू, जिन्होंने यहूदियत को अपनाया है, यहूद, यहूजा हजरत याकूब के बड़े बेटे का नाम है, यहूजा था और जाल का नुक्ता गिर गया है, तलफ्फुज़ मुश्किल होने से यहूद हो गया। यह यहूद के लफ्ज़ हुद खुद ना इलैह कुरान में तौबा करने के माना में इन्होंने क्या किया, तौबा के जिस तौबा के जिक्र आया कि एक दूसरे को कत्ल का हुक्म दिया था, तो खुलासा यहूद इस वजह से यहूद कहलाते हैं। व नसारा, नसारा नसरानी का जमा है, और नसरानी ईसाई को नसारा नसरानी कहते क्योंकि एक शहर है फिलिस्तीन में, शहर नासरा, वहाँ पर हज़रत मरियम रहती थी, हज़रत ईसा वहाँ पर दुनिया में आए, या इस वजह से नसारा को नसारा कहते हैं, या इस वजह से कि हज़रत ईसा ने पूछा मन अंसारी इलल्लाह, खुदा के राह में मेरे अंसार और मददगार कौन है, قال الحواريون نحن انصار الله, या इस वजह से नसारा को नसारा कहते हैं। खुलासा नसारा ईसाई, वसाबीन साबी के मुख्तलिफ वजूहात, हज़रत इदीस के एक बेटे का नाम है उसकी वजह से पैदा हुए, और मुख्तलिफ या निकलने के मसला है, किसी दीन से खारिज हो गए दूसरे दीन में आ गए वगैरह, माइल होने के नाम माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साबीन के बारे में एक बोल ये है कि ये लोग सितारा परस है, लेकिन तहकीक के मुताबिक सितारा परस नहीं है, अगर कि कुछ सितारों का एहतराम शायद है। बाज़ उलमा कहते हैं कि जिस तरह से काबा मुसलमानों के दरमियान मोहतरम है, कुछ सितारे साबीन के पास पास मोहतरम है, लेकिन ये लोग हजरत यहया के मानने वाले हैं। साबीन रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब के फतवा में क्या है, यहूदी, नसारा, साबीन, मजूस जिसको ज़रतुश्त या पारसी कहते हैं, ये सब अहले किताब है, अहले किताब है। ज़ाहिर अहले किताब का हुक्म बाकी कुफार से मुख्तलिफ है, नजिस नहीं होंगे। वो साबीन बस मुसलमान एक, यहूदी दो, नसारा तीन, साबीन चार, मन आमन बिल्ला, कहते ये इन सब में मेयार एक है, नाम मुहिम नहीं है, नाम कोई अहम नहीं है, अहम क्या है, मन आमन बिल्ला, खुदा पर ईमान लाए, वल्यौमिल आखर क़यामत पर भी ईमान लाए, खुदा पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान लाए, व अमल सालिहन और अमल सालिह करे, फलहुम अजरहुम, ऐसे लोगों के लिए उनका अजर मिलेगा, इन रब्बिहिम उनका अजर उनके पालने वाले के पास है, वला खौफुन अलैहिम, उनको कोई खौफ नहीं, खौफ आइंदे की निस्बत में होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा खौफ होता है, इनके आइंदे की निस्बत में इन्हें कोई खौफ भी नहीं है, वला हुम यहज़नून, गुज़श्ता की निस्बत में हुज़्न भी नहीं है, हमने जो किया था खामखा क्या है किया था, काम गलत हो गया ये हो गया, ऐसा हुज़्न भी नहीं है गुज़श्ते की निस्बत में, आइंदे की निस्बत में खौफ भी नहीं है। यहाँ पर इस आयत में कुछ लोगों ने कोशिश की है, अभी जदीद ज़माने में पुरोलारिज्म, ज़ाहिरन ये तबीर फारसी अरबी में होता है, कसरत, हर दीन को हक समझना, जो अमेरिका वाले सख्ती के साथ इसके पीछे है, मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को बेचता है इसी की, हत्ता पाकिस्तान में कुछ मौलाने भी, हमारे मौलाने भी कुछ इसी के लिए काम कर रहे हैं कि हर दीन हक है, हर नज़रिया हक है, वह खुलासा इसी चीज़, तो अदियान का अकीदा कमज़ोर करना चाहता, किसी दीन की निस्बत में अकीदा मजबूत ना रहे, सब हक हो जाए। दीन क्या है, आपको सफ़ेद कपड़ा पसंद है, दूसरे को हरा रंग का पसंद है, तीसरे को काला रंग का पसंद है, पसंद पसंद, ये दीन भी इसी तरह से। तो खुलासा वो लोग कहते हैं कि देखो ये आयत भी क्या कहती है, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, साबी, अगर ईमान हो, आखिरत को मानता हो, तो उसके अजर खुदा के पास है, उसका अमल ज़ाये नहीं होगा, बस हर दिन सही है अपनी जगह पर। इस आयत को दलील बनाते हैं इस नज़रिए के लिए रुजेगार उदी कौम आया था, तलबा बहुत जमा था, उसने वहाँ पर तकरीर में भी यही आयत लाया कि बाल इस आयत में ये कहता है। बेचारा मगरिब में है, बहरहाल उलमा इस्लाम से तो इतने ज़्यादा राबिता नहीं है, उलमा इस्लाम अगर राबिता हो भी क्या है अहले सुन्नत के उलमा के साथ है। तो खुलासा ये यानी हर दीन व मज़हब अपनी जगह पर सही है, इसको साबित करने के लिए देखो नबी का नाम नहीं लिया, खुदा और यौम आखिर और नेक अमल करे, ईमान लाए खुदा पर यौम आखिर पर और अमल नेक करे। लेकिन बात यह है कि अमल नेक कब होता है? अगर मौजूदा नबी के तालीम से हट कर कोई अमल करे वो अमल नेक नहीं है, बातिल अमल है। मौजूदा नबी बरहक के तालीम से हट कर अमल करे वो अमल अमल सालेह नहीं है। असल में आयत की शान नुज़ूल भी ये है कि मुसलमान जो इन्होंने पैगंबर पर ईमान लाया था वो परेशान हो रहे थे, हमारा आबा व अजदाद जो बाकी अदियान में थे उनके क्या बनेगा, उन्होंने जो अमल किया है वो क्या बनेगा। तो आयत नाजिल हुआ कि अगर खुदा को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, अमल सालिक, अमल सालिक कब होता है? अपने नबी की तालीम पर अमल किया है, यहूदी अपने यहूदियत के मुताबिक, ईसाई अपनी ईसाइयत के मुताबिक, अपने अपने ज़माने में अपने अपने नबी के दीन पर अमल किया है तो सही है। जो तुम्हारा आबा व अजदाद गुजरे हैं वो जहन्नमी नहीं है, अपने नबी की तालीमात के मुताबिक अमल किया है तो उनका अमल सही है। असल अमल सालेह से पता चलता है रिसालत को मानता हो, अगर रिसालत को नहीं मानता है अमल सालेह कैसे कर सकता है? अमल सालेह ही पैगंबर की तालीमात, वो पैगंबर जिसको खुदा अभी मानता है उस पैगंबर की तालीमात पर अमल करने को अमल सालेह कहते हैं। हज़रत मूसा गुजरे हैं, अभी पैगंबर इस्लाम आया है तो हज़रत मूसा की तालीमात पर अभी अमल करना, जबकि पैगंबर इस्लाम तालीमात को फ़र्ज़ करे नहीं मानता है तो अमल सालेह नहीं होगा। अमल सालेह मौजूद नबी के तालीमात पर अमल करने को कहते हैं। बस अमल सालेह का माना ही ये है कि मौजूदा नबी के तालीमात पर अमल करे। उसूल दीन तीन है ना, क्या है? तौहीद, नबुव्वत, मआद। तो यहाँ पर नबुव्वत का नाम नहीं है, लेकिन अमल सालेह से पता चलता है हर ज़माने के लोग अपने नबी की तालीमात पर अमल करे तो अमल सालेह है, बस नबी को मानना ज़रूरी है। बल्कि ख़ुद कुरान मजीद अहल किताब से कहते तुम मुसलमान हो जाओ वरना जजिया दे दो वरना मारे जाओगे। क़ुरान के मुख्तलिफ़ मकामात पर यहूदियों को ईसाइयों को हुक्म है आओ मुसलमान हो जाओ। ठीक है, दीन में या आपके ख़िदमत में क्या है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में इजबार नहीं है, ये अपनी जगह पर। क्यों? जब तक आदमी के समझ में ना आ जाए तो इजबार तो नहीं कर सकता है, तो ये अपनी जगह पर ला इकराह फिद्दीन। लेकिन दूसरी तरफ से इस्लाम मानना तो सब पर वाजिब है, मुशरिकीन पर भी वाजिब, यहूदियों पर भी वाजिब, हिंदुओं पर भी वाजिब, ईसाइयों पर भी वाजिब। तो क्या है, तहकीक करो, यानी वाजिब होने का माना यह कि तुम तहकीक करो, इल्म हासिल करो, तहकीक करो तो इस्लाम के हक़ानियत का इल्म होगा। तहकीक के बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम माफ़ हो, लेकिन इब्तिदा ही से तहकीक नहीं करेंगे ऐसी इजाज़त नहीं है। दोनों का फ़र्क यही है, क्या है, यानी दीन में इजबार नहीं है, ये अपनी जगह पर, क्योंकि दीन असल इजबार उसमें मुमकिन नहीं है, अकीदे में इजबार मुमकिन ही नहीं है। गैलीलियो जो है उसने साबित किया कि ज़मीन क्या है, सूरज के अतराफ में घूमती है, जबकि उस वक्त तक ईसाई मजहब का अकीदा ये था कि सूरज ज़मीन के अतराफ में घूमती है, नज़र आता है ना, सुबह से उधर से जाता है वहाँ तक चला जाता है, तो सूरज ज़मीन के अतराफ में घूमती है। इसने साबित किया, इसने वो बनाया था ना पहली दफा देखने के जो सामान है, तो बाहर ये तो काफिर हो गया इनके अकीदे के मुताबिक। कत्ल का हुक्म था लेकिन बड़े बड़े सिफारिश थे, कत्ल से बच गया, तौबा रात तौबा करने के लिए आया कि सूरज, मैं तौबा करता हूँ इस बात से कि सूरज ज़मीन के अतराब में नहीं घूमती है, बल्कि नहीं यानी ज़मीन सूरज के अतराब में नहीं घूमती है, सूरज ज़मीन के अतराब में घूमती है। तो कहते उस ये तौबा किया लेकिन साथ मिट्टी पर लिखा जिस जगह पर बैठा हुआ था कि मेरे कहने से हकीकत नहीं बदलती है, मेरे इस कहने से हकीकत बदलती नहीं है, ये हकीकत है। तो जाहिर है अकीदे में इजबार मुमकिन नहीं है, लेकिन कहा है मुसलमान हो जाओ यानी तहकीक करो, तुम क्या करो, तहकीक करो, तहकीक करके इस्लाम के हक्कानियत तुम्हारे लिए साबित होगी सही तहकीक करके। लेकिन नौकरी के लिए कनाडा जाते हो, बर्फानी इलाके में जाते हो, पूरी जायदाद बेच कर गुजार लेते हो, अब अकीदे के मसले में जन्नत जहन्नम के मसले में ज़र्रा बराबर तहकीक के लिए तैयार नहीं हो, तो कोताही तुम्हारी भी है ना। खुलासा तहकीक करके नतीजे तक नहीं पहुंचा तो तुम्हारी कोई कोताही नहीं है, वरना क्या है ज़रूर तहकीक करके करना चाहिए। तो फरमाते हैं बस इससे मतलब क्या हुआ, खुदा रसूल आखिरत पर ईमान लाना होगा। इस आयत में जो सारे अदयान कबूल हुआ अपने अपने ज़माने में जो अमल किया है वो दूसरे जो तफसीर की है उलमा ने, यह है कि ये अदयान वाले अपने असली किताबों में रुजू करें तो असली किताबों में पैगंबर इस्लाम की निशानियां मौजूद है, ये अदयान वाले अपनी किताबों में रुजू करें तो पैगंबर इस्लाम की निशानियाँ मौजूद है तो समझेंगे पैगंबर, तो अपने दीन पर अमल करें तो पैगंबर इस्लाम को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अपनी किताबों में क्या है पैगंबर इस्लाम के आमद की खबर बशारत मौजूद है। हत्ता बहुत से अध्ययन में इमाम ज़माने की आमद की बशारत मौजूद है। तो इस बिना पर अगर इन अध्ययन को मानते हो तो सही मानो, इनमें बशारत है पैगंबर की आमद का, तो नबूवत मुहम्मदी के एतराफ़ तुम खुद कर लोगे। तो अगर ऐसा किए तो इनके अमल महफूज है और इनके न खौफ है न हुज़ून है। लेकिन ये एक पैगाम मुसलमानों को भी है, सिर्फ मुसलमान का नाम होना काफ़ी नहीं, ईमान और अमल सालिह की ज़रूरत है, सिर्फ पार्टी में नाम लिखवाने से मसला हल नहीं होता है। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही।